खतरनाक प्लानिंग। मारिया की बात सुनने के बाद आस्था की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। उसने सोचा कि अरमान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह पागलपन की हद तक जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि अरमान पर उस वायरस के साइड इफेक्ट्स का असर हो रहा है, और आस्था अरमान को इस हालत में नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि भले ही अरमान ने उसे कुछ भी करने से मना किया हो, लेकिन अब वो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप नहीं बैठ सकती। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि उसे अपना ये मिशन गुपचुप तरीके से पूरा करना होगा। वो घर पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, और नानी माँ से मिलने के बहाने वो उस क्लब में ब्लैक डेविल से मिलने जाएगी, वो भी बिना किसी को पता लगे। उसका पूरा दिमाग इस वक्त बस इसी उधेड़बुन में था कि वो किस तरह से अरमान की जान बचाई जाए। हैरान सी वो अपने ही ख्यालों में काफ़ी देर खोई थी। तभी मारिया ने आस्था के ख्यालों को चकनाचूर करते हुए कहा, क्वीन, आप उस क्लब में अकेले नहीं जाएगी, मैं भी आपके साथ उस क्लब में चलूंगी। कहते हुए मारिया के एक्सप्रेशन फिर डार्क हो गए, जिस पर आस्था ने भी हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। अब दोनों ने एक साथ क्लब जाने का प्लान बना लिया था। लेकिन तभी मारिया को दरवाजे के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। आस्था के चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन आ गए, और उसकी आंखें अपने आप में परेशान सी लगने लगी थीं, और वह बेचैन होकर सोचने लगी, कहीं किसी ने उनकी बातें तो सुन नहीं ली। ये सब सोचकर उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया और आस्था दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि राधिका, रश्मि, रौनक, साथ साथ वंशिका और एंजल सभी मारिया के कमरे के बाहर कान लगाए उन्हीं की बातें चुपके से सुन रही थीं। उन सब पर नज़र पड़ते ही फौरन ही आस्था के कदम मानो जहाँ थे वहीं पर जम से गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिमाग तेज़ी से घूमने लगा। अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने तुरंत ही बाकी सबको अंदर बुलाते हुए हकलाई आवाज़ में पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आप सबने क्या क्या सुना है? आस्था खुद पर काबू करते हुए काफ़ी शांत बिहेव कर रही थी। तभी रश्मि ने सख्ती के साथ माथा सिकोड़ते हुए उससे पूछा, आस्था, हम जानते हैं कि हम तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हें इस तरह मौत के मुंह में जाने देंगे। हम जानते हैं कि मारिया दीदी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो एक साथ कई लोगों का सामना कर सकती हैं, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि उन्होंने अभी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है और उनकी हालत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो वहां जाकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। क्या तुम्हें लगता है कि मारिया दीदी का शरीर मारपीट झेल पाएगा? नहीं आस्था, मुझे ये बात आकाश को वापस जाकर बतानी होगी। तभी एंजल भी हामी भरते हुए तपाक से बोल पड़ी थी, हाँ हाँ, मुझे भी ये बात अविनाश जी को बतानी पड़ेगी। सभी लड़कियां अलग अलग तरीके से कहने लगी थीं कि वे अपने अपने पतियों को आस्था के इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता देंगी, जिसे सुनकर आस्था के चेहरे पर अचानक मायूसी छा गई, मानो उसे उनकी बातों का बहुत बुरा लगा हो। अचानक आस्था के एक्सप्रेशन सख्त होते चले गए। उसके चेहरे के कोने कोने पर तेज गुस्सा नजर आने लगा था। वो उन्हें देखते हुए हल्की नाराजगी से बोली, आप लोगों को क्या लगता है कि हम क्या कोई पागल इंसान हैं जो इस तरह से अपनी जान को जोखिम डालकर उस क्लब में मौज मस्ती करने जा रहे हैं? आस्था की आवाज़ भर आई थी, और वो एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, रश्मि दीदी, हम अपने पति की बिगड़ती हुई हालत नहीं देख सकते। आप नहीं जानती कि आज हमने उन्हें किस हालत में देखा है। हमने उन्हें लाशों के ढेर पर खड़े होकर हंसते हुए देखा है। क्या आप जानती हैं इसका क्या मतलब होता है? अब जैसे ही आस्था ने ये बातें कहीं, सभी लड़कियां पूरी तरह से डर गई थीं। तभी वंशिका एकदम से बोल पड़ी, लेकिन आस्था, तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर तुमने खुद देखा है कि अरमान भाई का पागलपन बढ़ता जा रहा है, तो ये वायरस के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है। और अगर तुम इस तरह सम्राट से मिलने चली गई और अगर अरमान भाई को इस बारे में पता चल गया, तो पता नहीं वो अपने पागलपन में क्या कर बैठेंगे। इसका असर उनके दिमाग पर हावी हो सकता है। लेकिन तभी आस्था कॉन्फिडेंस से बोली, हमें कुछ नहीं पता। हमने फैसला ले लिया है कि हम अपने पति को बचाने के लिए सम्राट से मिलने क्लब में जरूर जाएंगे, और वहां जाकर हमें एक नहीं दो दो काम करने हैं। ये बोलकर आस्था ने अपने शब्दों में सभी लड़कियों को पूरा प्लान समझाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो सब आस्था के शब्द सुन रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे। उनकी आंखें डगमगाने लगी थी, जैसे उन सबको भीतर ही भीतर कोई बात खाई जा रही थी। तभी एंजल ने असहज होकर पूछा, क्या ये सच है? वहीं रश्मि भी घबराई आवाज में चिंतित होकर बोली, नहीं आस्था, तुम्हारा वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी आस्था बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं रश्मि दीदी? आप अपनी हालत तो देखिए, आपके पेट में एक नवजात बच्चा पल रहा है, ऐसी हालत में आप हमारे साथ कैसे जा सकती हैं? और रौनक, तुम्हें गुनगुन का ध्यान रखना है, हम आप सबको अपने साथ इस तरह नहीं ले जा सकते। तभी वंशिका, एंजल और राधिका एक साथ बोली, हम जानते हैं कि रश्मि दीदी, रौनक और मारिया दीदी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन हम तीनों तो जा सकते हैं ना? देखो आस्था, वैसे भी वहां हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, हम फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर वेश बदलकर वहां जाएंगे,
तब तक तुम सम्राट से मिलने की कोशिश करना, और अगर हमें कुछ भी गलत लगा तो हम तुरंत अपने अपने पति को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? लेकिन हम तुम्हें वहां इस तरह अकेले नहीं जाने देंगे। तभी वंशिका कुछ सोचते हुए फिर बोलती है, हाँ आस्था, और वैसे भी क्लब वगैरह में पार्टी के लिए एक साथ इतनी सारी लड़कियां जाएंगी तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तो अब डिसाइड हो गया था कि आज हम सब लड़कियां एक साथ क्लब में जाएंगी। वंशिका का लहजा ऐसा था कि बहस की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तभी एंजल ने एकदम से पूछा, लेकिन हम अपने अपने पतियों को सामने क्या बहाना बनाएंगे? उन सबसे छुपकर कहीं जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस पर राधिका का चेहरा हल्का सा बदला। वो बेफिक्री वाले एक्सप्रेशन के साथ एंजल से बोली, इन सब चीजों की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है कि आज शाम वो सभी अपने फार्म हाउस पर जाने वाले हैं, तो जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलेंगे वैसे ही उनके निकलने के थोड़ी देर बाद हम लोग भी क्लब जाने के लिए निकल जाएंगे, और वैसे भी घर पर तो रौनक और रश्मि दीदी रहेंगी ही, वे यहाँ पर सब सिचुएशन संभाल लेंगी, और दादाजी वगैरह को हम बहाना लगाकर बोल देंगे कि हम किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं। जैसे ही राधिका ने यह खुराफाती आइडिया दिया तो ये सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा और हां में गर्दन हिलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये आइडिया काफी पसंद आ गया था। फिलहाल अब देर ना करते हुए सभी लड़कियां इस प्लान की तैयारी में जुट गई थीं और सभी मारिया के कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी रौनक की हड़बड़ाई आवाज ने अचानक सबका ध्यान खींचा। रौनक उन्हें रोकते हुए जल्दी से बोली, देखिए आप सब इस तरह से जा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी घर पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी यार मैं न्यूली मॉम बनी हूँ, आई नो मुझे इस तरह से अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसका पिता है ना, वो उसे संभाल लेगा यार, और वैसे भी मुझसे ज्यादा अच्छा ध्यान तो आहान उसका रखता है, उसे बच्चे का डायपर चेंज करना आता है, उसे कपड़े पहनाना आता है, मुझसे तो ये सब कुछ हो नहीं पाता है, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आहान मुझसे भी अच्छी माँ बनेगा।
फिलहाल वैसे मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है, ये बोलकर वो कुछ कहने लगी। रौनक के मुंह से निकले शब्दों ने वहां खड़े हर एक शख्स को हैरानी में डाल दिया था। उसका आइडिया सुनकर सभी के चेहरे पर जबरदस्त चमक आ गई थी। रौनक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब हम सबको अपने बाहर जाने का कारण बताएंगे तो कोई भी हमें नहीं रोकेगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। तभी राधिका एकदम से बोलती है, तो एक काम करते हैं कि आस्था को भेज देते हैं ये बात बताने के लिए। अब ये सुनकर आस्था की प्यारी सी आंखों में कुछ कन्फ्यूजन दिखाई देने लगा था। उसने अगले ही पल माहौल नॉर्मल करने की कोशिश की, ठीक है मैं समझ गई हूँ कि आप लोग मुझे उस क्लब में अकेले नहीं जाने देंगे। इतना बोलकर आस्था अब तुरंत ही स्टडी रूम की ओर जाने लगी थी। हालांकि उसका इरादा इस वक्त अरमान को फेस करने का नहीं था, क्योंकि अरमान का अजीब सा व्यवहार उसे काफी हद तक हैरान और परेशान कर रहा था। लेकिन तभी एंजल आस्था की सिचुएशन समझते बेचैनी के साथ आगे बढ़ी और दिल में एक झिझक लिए उसने आस्था के बालों को सहलाया। वो उसको देखकर मुस्कुराई और बोली, गोरी तुम जानती हो कि तुम हमारी जिंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, जितनी इम्पॉर्टेंट तुम हमारे लिए हो उतना ही अरमान भी इस फैमिली और स्पेशली तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं जानती हूँ कि वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, लेकिन शायद तुम भूल रही हो इस वक्त उन पर क्या बीत रही है, वो कितने दर्द में हैं, और उनको इस दर्द से बाहर निकालने के लिए ही तो तुम अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई हो, तो तुम्हें अपने ही पति का सामना करने में कैसा डर? ये सब कुछ तुम अरमान की भलाई के लिए तो कर रही हो। एंजल की दिलासा देने वाले शब्दों को सुनकर आस्था थोड़ी देर के लिए झिझकी, पर अंत में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं आस्था की आंखें भर आई थीं। उसने तुरंत एंजल को गले से लगा लिया था और उससे बोली, थैंक यू एंजल भाभी, यू आर ग्रेट। आस्था की आंखों में उस समय वहां मौजूद हर एक शख्स के लिए रिस्पेक्ट और चेहरे पर आभार की मुस्कान थी। उसने बारी बारी से सबको देखा और एक बार फिर से बोली, आप लोग फिर सोच लीजिए कि आप लोग चाहते हैं कि हम ये प्लान एग्जीक्यूट करें। सभी ने अपना सर हामी में काफी उतावलेपन के साथ हिलाया, जैसे वो सब जितना जोश से अपना सर हिलाएंगे आस्था को उतना ही ज्यादा उनकी बात पर विश्वास होता। आस्था को अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसे कहीं से गर्माहट मिल रही हो। लेकिन फिलहाल वो अपने इरादों को मजबूत करते हुए तुरंत स्टडी रूम में जाने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सभी लोग स्टडी रूम में डिस्कशन कर रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त स्टडी रूम अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था और सभी लोग उसके सामने खड़े हुए थे। हालांकि अबीर की आंखों में अभी भी अरमान के लिए गुस्सा और नफरत दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो आस्था की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अरमान ने जब सबको ग्रुप में मैसेज भेजकर बिना किसी को भनक लगे स्टडी रूम में बुलाया तो सभी लोग एकदम से चौंक गए और बिना देरी किए वहां जमा हो गए। फिलहाल अरमान ने अगले ही पल बारी बारी से सबको घूर कर देखा। अरमान ने शायद अबीर के एक्सप्रेशन ताड़ लिए थे। वो डार्क वॉइस में बोला, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?
अबीर की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी कार पर स्क्रैच मार दिया हो। वो चिड़चिड़े अंदाज में बोला, अरमान, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आस्था की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आस्था को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुमसे शादी करने के बाद उसकी जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। हस्ती खेलती आस्था अब खोई खोई सी परेशान दिखाई देने लगी है। अविनाश ने जब अबीर के मुंह से ये शब्द सुने, तब भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अरमान ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए अबीर को एक नजर घूर कर देखा, फिर बाकी सबकी ओर देखकर कुछ उखड़े अंदाज में बोला, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोगों को मुझसे बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, मुझे सारा सच पहले ही बता देना चाहिए था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंटीडोट किसने और क्यों चुराया है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जल्दी से उस प्रोफेसर को ठीक करो और उनकी कोटेशन यूज करके वापस से नया एंटीडोट बनवाओ, क्योंकि मुझे अपनी यादें जल्द से जल्द वापस चाहिए। अरमान की शांत आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कि आखिरकार उसने काफी सोच समझने के बाद ये फैसला लिया हो। अरमान ने अबीर की तरफ तिरछी नजर डाली और सीधे तरीके से बोला, और हाँ मिस्टर राठौर, मैं अपनी बीवी को कितना रुलाता हूँ या कितना हंसाता हूँ ये मेरा मैटर है, तो आप मेरी बीवी से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी बीवी के आसपास किसी की भी परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरमान ने जैसे ही एरोगेंट वॉइस में ये कहा, एक पल के लिए सभी लोग हैरानी से मुंह खोलकर उसे देखने लगे थे, क्योंकि अरमान की आंखों में ठंडक भरी हुई थी। उसकी तीखी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अबीर ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वहीं अबीर पर अरमान की किसी बात का जरा सा भी असर नहीं था।